नमस्कार भारत, तारीख 9 जुलाई दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले प्रधानमंत्री मोदी, लखवी पर चीन के रुख को लेकर जताई चिंता, विदेश सचिव एस जयशंकर बोले।
I'm sure that the Chinese side was impressed by, I would say, clarity.
पाकिस्तान में अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत। बिहार के मानपुर पटवा टोली के युवा इंजीनियर देश विदेश में परचम फहरा रहे हैं, लेकिन शादी के मामले में है उन पर जाति का बंधन।
जब हर जगह पे मतलब ओपन हो गया इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है, तो यहाँ यहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? एक बंधन टाइप लगता है कि हम लोग भी ओपन नहीं है।
विंबलडन में भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। रूस के उफा शहर में आज से ब्रिक्स देशों और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। बैठक में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बातचीत में मोदी ने मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए कार्रवाई करने के भारत के प्रस्ताव को चीन की तरफ से रोके जाने पर चिंता जताई। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री गी वेरहफ्टस्टाट ने कहा है कि वो निश्चित आर्थिक सुधारों को न बताने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास से नाराज हैं। उधर प्रधानमंत्री सिप्रास ने वादा किया है कि उनकी सरकार आज अपने कर्जदाताओं के सामने कुछ ठोस सुझाव रखेगी, लेकिन यूरोपीय संसद के सदस्य वेरहफ्टस्टाट के मुताबिक इस पूरे मसले पर और अधिक स्पष्ट होने की जरूरत है। मैं नाराज हूं क्योंकि आप सुधारों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन सुधारों के ठोस सुझाव हम कभी नहीं देखते। मैं गुस्से में हूं क्योंकि हम तेजी से ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक सेक्टर का आकार घटाना होगा। वामपंथियों के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो करना ही होगा। ये थे वेरहफ्टस्टाट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के शहर बाल्टीमोर के पुलिस आयुक्त को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में एक काले व्यक्ति फ्रेडी ग्रे की मौत के 2.5 महीने बाद यह कदम उठाया गया। शहर के मेयर स्टेफनी रॉलिंग ब्लेक ने कहा कि पुलिस आयुक्त एंटनी बैट्स की लगातार बढ़ती निंदा शहर को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उन्होंने कहा कि शहर में हत्याओं की बढ़ती वारदातों के कारण जरूरी हो गया था कि नेतृत्व में बदलाव लाया जाए। फ्रेडी ग्रे की मौत के लिए 6 पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE को तकनीकी कारणों से 3 घंटों से भी ज़्यादा बंद रखने के बाद खोला गया है। इस दौरान NYSE ने अपनी सारी ट्रेडिंग निलंबित कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस और वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन देश की घरेलू सुरक्षा के मंत्री जे जॉनसन का कहना है कि इसमें साइबर सुरक्षा में घुसपैठ के कोई संकेत नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि रूस का 12 विदेशी संस्थाओं को अवांछित की सूची में शामिल करने का फैसला नागरिक समाज का गला घोंटने की कोशिश है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बने नए कानून के अनुसार वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा ये सूची बनाई गई है। अगर इसे सरकारी अभियोक्ताओं की मंजूरी मिल जाती है तो सूची में शामिल संस्थाओं को बैन कर दिया जाएगा। जिन संस्थाओं को निशाना बनाया गया है उनमें से कई को अमरीकी सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी आपने प्रगति सक्सेना से सुना, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की, लेकिन शी जिनपिंग से मुलाकात में मोदी ने मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए कार्रवाई करने के प्रस्ताव को चीन की ओर से रोके जाने पर चिंता जताई। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की बैठक में मुंबई हमलों के कथित रूप से जिम्मेदार जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर यह प्रस्ताव भारत की ओर से रखा गया था। इस प्रस्ताव में लखवी को पाकिस्तान में रिहा किए जाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन चीन के प्रतिनिधि ने इस आधार पर प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया कि भारत ने इस संबंध में पर्याप्त सूचनाएं मुहैया नहीं कराई हैं। मोदी और शी की बातचीत के बाद विदेश सचिव जयशंकर ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन द्वारा प्रस्ताव को रोके जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने हमारी चिंताओं को पूरी तरह से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं मान रहा हूं जिस स्पष्टवादिता से और प्रत्यक्ष रूप से बात कही गई उससे चीनी पक्ष प्रभावित है। ऐसा लगा कि हमें उस पर बात करते रहने चाहिए। चीन द्वारा दिए गए कमजोर साक्ष्यों के सिद्धांत को खारिज करते हुए विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि ये मामला, इस पर बात होगी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन के आर्थिक गलियारे पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा,
चीन के साथ जो है काफी माने डिटेल में जो बॉर्डर सिचुएशन पर बात हुई, दोनों एसआर भी थे साथ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनके यहाँ से, उनके स्टेट काउंसलर जो एसआर हैं वो भी थे। जब हमारे प्रधानमंत्री की पिछली मुलाकात जो प्रेसिडेंट शी से हुई थी शियान में, तब भी ये मुद्दे काफ़ी डिटेल में उनके आपस में डिस्कशन हुए, तो उन्होंने जो था उसको आगे बढ़ाया।
सीमा मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मोदी ने शी जिनपिंग के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। रूस के शहर उफा में पहुंचने से पहले भारत और कजाकिस्तान ने 5 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और यूरेनियम की सप्लाई प्रमुख था। हमारे सहयोगी सुशीला सिंह ने रूस में मौजूद पत्रकार अजय कौल से संपर्क साधा और पूछा कि मोदी और पुतिन की बातचीत में क्या बातचीत हुई।
ये बातचीत 90 मिनट तक चली और इसमें सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ। ऐसा कोई आउटकम स्ट्रक्चर मीटिंग तो दी नहीं कि इसमें जो आउटकम हो जाए, कोई रिजल्ट आया, एग्रीमेंट साइन हुआ, क्योंकि ये ब्रिक्स जैसे होस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, तो उसके लिए ये कर्टसी कॉल थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और जिसमें बायलैटरल जो रिलेशनशिप है। ये मीटिंग के बाद फॉरेन सिक्योरिटी एस जयशंकर, उन्होंने एक ब्रीफिंग की, उसमें इन्होंने बताया कि सारे जो इकोनॉमिक रिलेटेड है, जैसे ट्रेड के बारे में कैसे बढ़ाया जाए, मार्केट एक्सेस जो इशू है अभी उसको कैसे एड्रेस किया जाए, जो वीजा रिलेटेड चैलेंजेस हैं मतलब उसको कैसे, उन चीजों को कैसे मतलब एड्रेस किया जाए कि ताकि ईज ऑफ बिजनेस हो, और FTA जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरेशिया जोन के साथ, इकोनॉमिक जोन के साथ, उसको कैसे हुआ। डिफेंस कॉपरेशन जो है इंडिया भारत और रशिया के साथ, वो बहुत एक अच्छी खासी है जो सदियों से चली आ, मतलब टिकेट से चली आ रही है, उसका एक जायजा लिया गया। न्यूक्लियर जो अभी कॉपरेशन भारत और रशिया के बीच में बहुत अच्छी खासी है, उसका एक जायजा लिया गया। पर्टिकुलरली जो कुदमकुलम में जो यूनिट 3 और 4 का जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या अभी मतलब प्रोग्रेस है।
7वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है आज से शुरू हो रहा है। इस बीच भारत के मीडिया में ये खबरें छाई रही कि इस मीटिंग के दौरान ही भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुलाकात करेंगे, क्या इसकी पुष्टि हो पाई है कि उन दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी।
देखिए, ऑफिशियल अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन संभावना पूरी बनी हुई है और ये जो इंडिकेशन मिल रही है कि परसों होगी।
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अब भारत और पाकिस्तान को जो है एंट्री मिल रही है, तो इससे क्या लग रहा है कि अब भारत को कितना फायदा होगा।
भारत को जैसे अभी ट्रेड का, इकोनॉमी एंड जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, प्लस जो इसके नंबर है SCO के, वो चाइना है, और उससे वो जो एनर्जी और मेरी बेसिकली एनर्जी और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की उस एंगल से बहुत फायदा होगा भारत। देखिए, इसमें मेजर टॉपिक एक रहेगा जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक हुआ, अभी बना सेटअप हुआ है, जिसमें हमारे नोटेड इकोनॉमिस्ट है, बैंकर है केवी कामत साहब, वो इसके हेड बन चुके हैं, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ उनका। उससे ज्यादा सबसे ज्यादा चर्चा होगी इस ब्रिक्स में कि वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो बना है, ये इसका क्या रोल होगा। इसमें एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट किया जा रहा है $100 बिलियन का, जिसमें इंडिया भी हम $18 बिलियन डाल रहे हैं एंड चाइना सबसे ज्यादा $41 बिलियन डाल रहे हैं। इसका अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या रोल होगा इसमें, अभी बातचीत ये भी चल रही है कि लोकल करेंसी में एक क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए और स्टार्ट किया जाए आपस में क्रेडिट इन लोकल करेंसी, एक ये इश्यू होगा, मुद्दा होगा।
रूस में मौजूद पत्रकार अजय कौल बता रहे थे कि क्या पुतिन और मोदी के बीच में बातचीत हुई और क्या मुद्दे रहेंगे इस सम्मेलन में। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तानी हुकूमत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि यह बैठक इस्लामाबाद के पास मौजूद एक पहाड़ी शहर मूरी में हुई और बैठक में चीन व अमेरिका के पर्यवेक्षक मौजूद थे। दोनों पक्षों ने शांति की जरूरत बताई और कहा कि वो रमजान के बाद फिर मिलेंगे। सुशीला सिंह ने इस्लामाबाद फोन करके बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद से बात की।
जो पाकिस्तानी वजारत खारजा है, विदेशी मंत्रालय, उसका जो बयान सामने आया है उसमें तो उन्होंने कहा है काफी उसमें ऑप्टिमिस्टिक है कि काफी अच्छे माहौल में बात हुई दोनों फरीकों में और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि इसे जारी रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगर इन मुजाकरात के इर्द गिर्द अगर कोई मनफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है तो उसको नजरअंदाज करते हुए बातचीत को जारी रखा जाएगा। और ये कि इसका अगला राउंड जो है वो रमजान का जो महीना है उसके खत्म होने के बाद कोई मुत्तफिका जगह और वक्त का तयन किया जाएगा जहाँ पर दोबारा मुलाकात होगी।
यहाँ ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका और चाइना जो है इस बातचीत में एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पे था, तो उनकी तरफ से कुछ बयान आया है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ माने तो उनका कहना है कि ये ब्रेक थ्रू है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस प्रक्रिया को अब सफल होना होगा, तो क्या मतलब निकाला जाए इसका?
जो अमेरिका है और चीन है वो उनको इसलिए शायद रखा गया है आगे चलकर अगर कोई बातचीत किसी फैसला कुन फेज में दाखिल होती है तो उस वक्त गारंटी के तौर पर चीन और अमेरिका को अहम किरदार अदा करना होगा। उसमें फिर ये भी सुना गया है कि यूनाइटेड नेशंस का भी एक किरदार रहा है कल की बातचीत में, तो वो भी एज अ गारंटर इसमें एक रोल होगा उनका भी, तो इसीलिए उनको शुरू से इसमें रखा गया है। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है कि ब्रेक थ्रू है तो बात बड़ी है बिल्कुल। तालिबान का इस तरह राजी हो जाना भी एक बड़ी बात है, इससे पहले वो कभी भी ताबते करते रहे हैं, उनके वक्त जो है वो पिछले कुछ वर्षों से विदेशी दौरे भी शुरू कर दिए थे उन्होंने, लेकिन कोई बाजाबता बातचीत बैठकर नहीं हुई थी, तो अगर उस एतबार से देखा जाए तो ये बड़ी बात है कि वो सामने आए हैं। और उनका बयान जो आया वो भी इतना क्लियर तो नहीं है लेकिन उसमें भी कुछ इस तरह का इशारा मिलता है कि वो कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो वक्त के साथ साथ अपनी पॉलिसियां चेंज करते रहते हैं, तो शायद ये जो अब बातचीत की पॉलिसी चेंज हुई है ये भी उनका उसके पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा, उनका जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो किसी भी वक्त कहीं भी बातचीत कर सकता है, तो लगता ये है कि इतना का इशारा दे रहे हैं कि अगर उनके लोगों ने बातचीत की है तो वो उनको उसका पूरा अख्तियार था।
अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है पहले भी, लेकिन अब जो ये औपचारिक बातचीत हुई है उसे लेकर तालिबान पर कितना भरोसा किया जा सकता है?
ये तो आगे चल के जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि एक जो हमें बताया गया है कुछ लोगों ने सरकार के यहाँ पर कि एक इस तरह का भी इत्तफाक हुआ है कि अब एक दूसरे के टारगेट्स को हमले पर हमले नहीं करेंगे, यानी अफगान सरकार और तालिबान जो है वो उनके दरमियान जो लड़ाई है वो कुछ कम हो जाएगी। लेकिन उसमें साथ में ये भी है कि वो ये समझते हैं कि कुछ इसमें नाराज लोग होंगे तालिबान के अंदर या जो इन निगोशिएशंस के खिलाफ हैं वो शायद कुछ कार्रवाइयां करें, तो एकदम बंद नहीं होंगे लेकिन शायद कमी आएगी, तो एक चीज ये होगी। दूसरा, लगता है कि उन पर काफी प्रेशर है पाकिस्तान का भी और आईएसआई का भी कि वो इस वक्त बातचीत जो पाकिस्तान एक पॉलिसी लेकर चल रहा है कि अब वायलेंस को खत्म करना है मुल्क में और अफगानिस्तान में इस खत्ते में, तो उसके लिए जो उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है तालिबान पर वो उसमें रोल अदा कर रहा है। फिर जो एक इस्लामिक स्टेट नई एक मसला फिनमना अफगानिस्तान में सर उठा रहा है उसका भी प्रेशर है तालिबान पर क्योंकि वो उनको चैलेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से लगता है कि तालिबान के लिए भी ये वक्त मौजूद है बातचीत का, अगर अभी नहीं करेंगे तो काफी वक्त जाया हो जाए।
पाकिस्तान में अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत विश्लेषण कर रहे थे बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद। रुख एक बार फिर से भारत का करते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमा मालिनी की कार से हुई जबरदस्त टक्कर में एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची के पिता हनुमान खंडेलवाल, उनकी पत्नी और बेटा अभी भी अस्पताल में हैं और शायद बिल्कुल स्वस्थ होने में 2-3 महीने लगें। हादसे के बारे में तब से ही बहस जारी है कि क्या वीआईपी पर अधिक ध्यान देने के चलते आम घायल परिवार की उपेक्षा हुई। रिपोर्ट सुनिए जयपुर से आभा शर्मा की।
मथुरा से सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जब 2 जुलाई को मथुरा से जयपुर आ रही थी तब उनकी मर्सिडीज से एक अन्य कार की भीषण टक्कर हुई। दौसा के पास हुए इस हादसे में एक 2 साल की बच्ची की जान भी चली गई और 4 अन्य परिजन घायल हुए। बच्ची के पिता हनुमान खंडेलवाल अब पहले से बेहतर हैं, पर कल हेमा मालिनी द्वारा किए गए ट्वीट से आहत नज़र आते हैं, जिसमें हेमा मालिनी ने कहा था कि यदि बच्ची के पिता ट्रैफिक नियमों का पालन करते तो उनकी बच्ची बच सकती थी। जब बीबीसी ने हनुमान खंडेलवाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा,
मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि देखने वाले पुलिस वाले और मीडिया वाले, गाड़ी की कंडीशन सबको पता है, स्पीड सबको पता है, नेशनल हाईवे पे कितनी स्पीड गाड़ी की होनी चाहिए वो उनको पता है, 150 160 उनकी स्पीड बता रहे हैं। मैं जीरो स्पीड पे था, इसके अलावा रोड पे मेरे को जाना ही था, मेरे आगे एक गाड़ी और क्रॉस हुई है, रोड देख के क्रॉस करा है, आंधी की तरह गाड़ी आ गई, टकरा गई। इसमें अगर मेरी कोई गलती हो तो वो बताएं क्या गलती। और आज जो ये चीज़ कह रही है वहाँ बैठ के अपने बचाव के लिए, उन सांसद होने के नाते जनप्रतिनिधि छोटी सोच, हमें बहुत दुख हुआ है, परिवार को बहुत दुख हुआ है।
उन्होंने कहा कि सांसद जयपुर में थी तब भी कुछ कह सकती थी। उनकी माँ रामरति अपनी पोती के अंतिम संस्कार के बाद जयपुर आ गई थी। वो बताती हैं कि हनुमान के अलावा घर में और कोई कमाऊ सदस्य नहीं है।
जो भी कुछ है तो पर तो सपोर्ट तो देना चाहिए ना, सरकार को भी करनी चाहिए थी, सरकार ने तो हेमा मालिनी जी तो कर सकती थी ना, लेकिन वो एक बार संपर्क करती, वो जाने उनका काम जाने उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन देना तो चाहिए ही चाहिए। कमाने वाला कोई रहा ही नहीं, अब मैं अकेली कहाँ से किस जगह से भाग दौड़ करूंगी, इनको कैसे वो कर पाऊंगी, अब मैं मजदूरी करूंगी या इनको खिलाऊंगी या क्या करूंगी, मेरे को खुद को ये पता नहीं।
हादसे के बाद से ही इस बात को लेकर काफी बहस हो रही है कि क्या स्वयं हेमा मालिनी या उनको अपनी गाड़ी से जयपुर पहुंचाने वाले डॉक्टर साहब को जरा रुककर घायल परिवार की हालत नहीं देख लेनी चाहिए थी। हालांकि हेमा मालिनी ने पहले अपनी संवेदना व्यक्त भी की थी, पर उनके हालिया ट्वीट से घायल परिवार के जख्म फिर से हरे हो गए लगते हैं। जयपुर से आभा शर्मा।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत न होता।
मैं तो हूँ
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा सुनिए इस रविवार से दिन भर में।
तो जल्द ये श्रृंखला आपके लिए आने वाली है और रविवार से यानी कि दिनभर कार्यक्रम में आप इस श्रृंखला को सुन पाएंगे। कार्यक्रम में अब बात करेंगे अखबारों की। प्रगति सक्सेना अखबार पलट चुकी हैं और बहुत बहुत गोले लगा दिए आपने बड़ी बड़ी खबरों पर। गोले कौन से लगाए हैं बताइए।
एक तो व्यापम मामला आज सुप्रीम कोर्ट में, व्यापम मामले से जुड़ी जो याचिकाएं हैं उस पे सुनवाई शुरू होगी, और दूसरा हेमा मालिनी जी जो फिल्म अभिनेत्री हैं और भाजपा की सदस्य भी हैं, हेमा मालिनी ने कहा है कि उनके साथ जो सड़क दुर्घटना हुई उसमें पिता की गलती थी।
और वही रिपोर्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनाई।
और उबर लाइसेंस उबर को ना देने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक और झटका दिया और कहा है कि लाइसेंस रद्द करने से अच्छा है कि उनके नियम उन पर कड़े लगाए जाएं। पूर्वोत्तर के लोगों पर नस्ली टिप्पणी की तो 5 साल की जेल हो सकती है, अब ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को एक हलफनामे में ये सूचना दी है। नई दुनिया और दैनिक जागरण में एक खबर है दिलचस्प कि चीन से आयात हो रहा है सिंथेटिक चावल। अब हो सकता है कि जो आप चावल खा रहे हो वो चावल ना हो, वो आलू और शकरकंद और प्लास्टिक से बना हुआ कुछ हो
और उसका शेप जो है वो
चावल जैसा होगा। तो नई दुनिया में व्यापम को लेके एक अलग खबर है, वो ये कि पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में ट्रायल शुरू होते ही पहले ही सरकारी गवाह की मौत हो गई है। जनसत्ता में सलमान के खिलाफ फर्जी व्हाट्सएप संदेश की जांच में जुटी पुलिस, ये एक अलग खबर है। और करमापा उगेन दोरजी पर चलेगा मुकदमा, ये एक NGO की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला है, उन पर कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित करने और ज़मीन हथियाने के मुकदमे हैं। तीस्ता पर सीबीआई ने दर्ज किया है मामला। गृह मंत्रालय से बिना पूछे विदेश से पैसा लेने के सिलसिले में ये मामला दर्ज किया गया है। और एक बिल्कुल अलग खबर वो है, वो ये है कि अमीरों को कबूल नहीं एक से ज़्यादा बेटियां, यानी भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या के पीछे गरीबी मुख्य वजह नहीं है। हाँ। ये अमीर लोग भी एक से ज़्यादा बेटी नहीं चाहते हैं।
प्रगति, मेरे पास एक दैनिक भास्कर है और जिसमें कि पाक रक्षा मंत्री की एक धमकी है, भारत के खिलाफ कर सकते हैं परमाणु बम का इस्तेमाल, और ये जो चेतावनी है ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पाकिस्तान में छद्म युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि हमारे पास जो परमाणु बम है वो दिखावे के लिए नहीं। ये लगभग उसी तरह की टिप्पणी है जैसा कि कुछ समय पहले परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि हम शबे रात के लिए अपने परमाणु बम हथियार नहीं रखे हुए।
इसी से जुड़ी एक और खबर है, नवभारत टाइम्स में है कि जमात-उद-दावा पर अभी बैन नहीं लगाएगा पाक। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की अगुवाई वाले संगठन पर प्रतिबंध लगाने की संभावना से उसने बिल्कुल इनकार किया।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति। और कार्यक्रम में अब एक विशेष रिपोर्ट की हम बात करेंगे। बिहार के गया शहर में मानपुर पटवा टोली के युवा लगातार आईआईटी और दूसरे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों से पढ़कर देश विदेश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके जीवन साथी की तलाश पटवा टोली की तंग गलियों में आकर ही पूरी होती है। शादी के मामले में पटवा समाज में आखिर कौन सा खास बंधन है और वहां के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मनीष चांडिल की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
गया शहर के मानपुर पटवा टोली के युवा लगातार आईआईटी और दूसरे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों से पढ़कर देश विदेश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। पटवा टोली के युवकों की जबरदस्त कामयाबी की यहां समाज में प्रचलित बाल विवाह को खत्म करने में बड़ी भूमिका रही है। इस कामयाबी से लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है, लेकिन शादी के मामले में अब भी पटवा समाज में कई दूसरे समुदायों के मुकाबले कहीं ज्यादा बंधन है। समाज से बाहर शादी करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और पटवा समाज का मतलब है सिर्फ मानपुर पटवा टोली और आसपास के कुछ मोहल्लों में रहने वाले पटवा जाति के लोग। जैसा कि दुर्गा जी पटवाई जातीय सुधार समिति के सचिव युवराज प्रसाद पटवा बताते हैं,
लगभग जो है सो 5 से 7 केस आए हैं जिसमें से मात्र डॉक्टर सीताराम प्रसाद जो है वही वापस आए, बाकी अभी तक जो बहिष्कृत है। तो बहिष्कृत का मतलब यही हुआ कि जो मेरे यहाँ पे प्रथाएं हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, उसके अनुसार जब भी कोई शादी बाहर में करते हैं, बाहर के अदर कास्ट से करते हैं, तो उनके साथ खाना पीना आवागमन करना, आवागमन करने का मतलब कि खाने के निमंत्रण पे आवागमन, ऐसे डेली नहीं, तो ये सारी बंधन जो है बिल्कुल पाबंदी के साथ लागू होती है।
कुछ सालों पहले डॉक्टर सीताराम प्रसाद को अपने बेटे के लायक लड़की मानपुर में नहीं मिली, मजबूरन बेटी की शादी उन्हें दरभंगा में एक स्वजातीय परिवार में करनी पड़ी। नतीजा ये कि वे समाज से बाहर किए गए, काफी कोशिशों के बाद वे समाज में वापस शामिल हो पाए हैं और अब इस मामले में सीताराम प्रसाद कोई बातचीत तक करने से इनकार करते हैं। इस सामाजिक बंधन पर यहाँ की युवाओं की राय अलग अलग है। पटवा टोली के आकाश कुमार अभी NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं।
मन में तो आता है कि मतलब ऐसा क्यों, मतलब इस तरह का कास्ट क्यों मैरिज करना रहता है, जब हर जगह पे मतलब ओपन हो गया इंटर कास्ट मैरिज अलाउड है, तो यहाँ यहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, एक बंधन टाइप लगता है कि हम लोग भी ओपन नहीं है, गर्ल्स से टॉकिंग में भी हेजिटेशन होने लगता है हम लोग को, अदर कास्ट के लड़कियों से बात करना पता समाज को बुरा लग सकता है इस तरह से मतलब।
वहीं पीताम्बर कुमार जैसों को लगता है कि नई पीढ़ी बदलाव भी लाएगी और बदलावों को स्वीकार भी करेगी। पीताम्बर पटवा टोली से 27 वर्षों बाद इस साल UPSC की मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं।
अगर मैं 20 साल बाद का इमेजिन करता हूँ पटवा टोली, तो एक नए तरह के समाज होगा यहाँ पे। मे बी जो आज के जो थिंकिंग है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आई नहीं, क्योंकि उनकी पढ़ाई उनके जो भी मतलब पालन पोषण यहाँ से बाहर हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इन कल्चर को मुझे नहीं लगता कि शायद इतने क्लोजली वो इंटरलिंक्ड होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले एक्सेप्टेंस की बात आती है।
यहाँ के बड़े बूढ़े बातचीत में इस बंधन के हिमायती ही नजर आते हैं, क्योंकि इसने उन्हें दहेज की बुराई से बचाए रखा है। हालांकि युवराज प्रसाद पटवा जैसे कुछ लोग मौजूदा परंपरा में थोड़ी छूट के हिमायती हैं। वे चाहते हैं कि अगर भारत में कहीं भी रहने वाले पटवा जाति के लोग बिना दहेज के हमारे यहाँ शादी करने को तैयार हों, तो इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। ऐसे में यह तो आने वाले दिनों में ही सामने आएगा कि इस बंधन को तोड़ने के लिए समाज कब और कैसे सामने आता है। या कि इस बंधन से ही समाज में टूट पैदा होती है। मनीष शांडिल, पटवा टोली, गया।
और इस रिपोर्ट के बाद अब उन खबरों की चर्चा जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
सुप्रीम कोर्ट आज व्यापम घोटाले से जुड़ी चार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की याचिका और राज्यपाल राम नरेश यादव की बर्खास्तगी की मांग करने वाली याचिका भी शामिल है। ग्रीस के प्रधानमंत्री अपने कर्जदाताओं के सामने आज व्यवहारिक सुधार पेश करेंगे ताकि ग्रीस को आर्थिक संकट से उबारने का पैकेज तैयार किया जा सके। उधर एथेंस में यूरोप के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया है। जर्मनी का बुंडस बैंक इस संकट के दौरान अपने सेंट्रल बैंक के परिचालन पर भी बैठक करेगा। रूस के शहर उफा में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स देशों के नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं। इसी दौरान वे आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल आज बोस्निया की राजधानी सरायेवो का दौरा करेंगी। इस यात्रा का मकसद बोस्निया के नेताओं को उन आर्थिक सुधारों के लिए प्रेरित करना है जो बोस्निया के यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने के लिए जरूरी हैं। राजनीतिक मतभेदों के कारण इसमें वर्षों से गतिरोध आते रहे हैं। दक्षिणी अल्जीरिया में बर्बर और अरब समुदाय में मुठभेड़ में कम से कम 22 लोग मारे जा चुके हैं। राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूतेफ्लिका ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण है।
और अब खबरें विंबलडन से।
विंबलडन 2015, दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कल विंबलडन में पुरुषों के सेमीफाइनल तय हो गए। पहले सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का मुकाबला ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच की टक्कर होगी फ्रांस के रिचार्ड गास्के से। कल क्वार्टर फाइनल में दूसरी सीट के खिलाड़ी रोजर फेडरर का मुकाबला 12वीं सीट के फ्रांस के खिलाड़ी जील सीमो से हुआ। फेडरर ने अपेक्षा के अनुरूप शानदार खेल दिखाया और 1 घंटे 34 मिनट तक चला मैच 6-3, 7-5, 6-2 से अपने नाम कर लिया। हालांकि कल लंदन में खराब मौसम से बाधा आ रही थी और फेडरर को भी इससे परेशानी हुई।
ये
आसान नहीं था किसी भी खिलाड़ी के लिए। हवा काफी तेज थी, बीच बीच में खेल रुकने से भी दिक्कत हो रही थी। पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, पर मुझे लगता है मैंने इन रुकावटों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, तो मैं खुश हूं कि मैं आज जीत सका। रोजर फेडरर के शब्द। अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में फेडरर का मुकाबला होगा एंडी मरे से। मरे ने कल क्वार्टर फाइनल में कनाडा के वासेक पोस्पिसिल को हराया, जो 56वीं सीड के खिलाड़ी थे। मैच 2 घंटे 13 मिनट चला और मरे ने वासेक पोस्पिसिल को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर एक बार फिर अंतिम चार खिलाड़ियों में जगह बनाई। दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी और पिछले साल के विंबलडन चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल क्वार्टर फाइनल में यूएस ओपन विजेता क्रोएशिया के मारिन चिलिच को हराया। दोनों खिलाड़ी पिछले साल भी क्वार्टर फाइनल में टकराए थे और जोकोविच ने इस बार भी उन्हें सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपने खिताब को बचाने का अभियान बरकरार रखा। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला अब होगा फ्रांस के 21वीं सीड के खिलाड़ी रिचार्ड गास्के से, जिन्होंने कल एक जबरदस्त मैच में 4th सीड के खिलाड़ी और इस साल के फ्रेंच ओपन विजेता स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका को हरा दिया। ये मैच 5 सेटों तक चला। कल भारत के लिए दिन अच्छा रहा। सानिया मिर्जा महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने अपनी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ क्वार्टर फाइनल मैच में सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से जीत दर्ज की। अब आज विंबलडन में महिलाओं के सेमीफाइनल मैच होंगे। दोनों मैचों में सबसे ज्यादा नजर रहेगी प्रथम सीड की सरीना विलियम्स और 4th सीड की मारिया शरापोवा के मैच पर। महिलाओं का दूसरा सेमीफाइनल 13वीं सीड की पोलैंड की एग्नेशका राडवांस्का और 20वीं सीड की स्पेन की गार्बिन मुगुरुथा ब्लांको के बीच होगा। भारतीय खिलाड़ियों में आज नजर रहेगी रोहन बोपन्ना के मैच पर, जो विंबलडन में पहली बार डबल्स का सेमीफाइनल खेलेंगे। इनके अलावा आज लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा भी मिक्स डबल्स में अपने क्वार्टर फाइनल राउंड के मैच खेलेंगे। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी, विंबलडन।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। रूस के उफा शहर में आज से ब्रिक्स देशों और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। बैठक में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री गी वेरहाफ्टस्टाट ने कहा है कि वो निश्चित आर्थिक सुधारों को न बताने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रा से नाराज हैं।
अमेरिका के शहर बाल्टीमोर के पुलिस आयुक्त को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में एक काले व्यक्ति फ्रेडी ग्रे की मौत के 2.5 महीने बाद यह कदम उठाया गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को तकनीकी कारणों से 3 घंटों से भी ज्यादा बंद रखने के बाद खोला गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि रूस का 12 विदेशी संस्थाओं को अवांछित की सूची में शामिल करने का फैसला नागरिक समाज का गला घोटने की कोशिश है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को सरकार को गिराने की कोशिश में एक सीनेट सदस्य को रिश्वत देने का दोषी पाया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। अगली सभा यानी कि विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।